ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. اور جہاں کہیں سے تم نکلو، یعنی سفر میں جاؤ، حضر میں ہو، گھر میں ہو یا سفر میں ہو، اپنا رخ آپ نے نماز کے وقت قبلے کی طرف کرنا ہے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا. اور یہ دوبارہ اس لیے کہا گیا کہ وجہ بتائی گئی کیوں کیوں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ قبلے کی حیثیت کیا ہے ہمارے لیے. اور تاکید کسی بات کی کب کی جاتی ہے؟ جب اس کی امپورٹنس بتانی ہو کہ اب ثابت قدم رہنا اس پہ. اور آپ یہ دیکھیں نا، یہ قبلہ کس کا تھا، اس کو کس نے بلڈ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی یعنی ایک دعوت کا مرکز ہے، ایک سینٹر ہے ان کی دعوت کا. اور آپ کی دعوت کیا تھی؟ وہی اصل دین ہے، توحید تھی آپ کی دعوت. وما کانا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو ہم نے انہی کے قبلے کو ریوائیو کیا. آپ کیا انہی کے دین پہ ہم بھی ہیں، توحید پہ. تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، اور اس کے بعد آپ کی امت کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا گیا کہ آپ بھی اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کرتے. کیوں؟ تین یہاں پہ ریزنز بتائی گئی. نمبر ون ریزن، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتُمْ، اس لیے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت. اگر تم نے ایسا کیا کہ اب تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے اور پھر بھی تم کبھی کہیں پڑھ رہے ہو کبھی کہیں پڑھ رہے ہو، تو لوگوں میں ایک مذاق بن جائے گا، ان لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا. تو تم لوگوں کو کوئی حجت نہ دو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی بات کریں، ٹھیک ہے. تم اگر اللہ کی باتوں پر، اس کے احکامات پر کمپرومائز کرو گے نا، تو لوگوں کو بات بنانے کا موقع مل جائے گا. جیسے آج مسلمان جب کمپرومائز کرتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کے تو مسلمان وہاں پہ شراب پیتے ہیں اور وہاں پہ یہ کرتے ہو، تو آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے. اوکے، ہم نے اپنا دکھا دیا نا کہ ہم تو اس کے اوپر فرم ہی نہیں ہیں. تو جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو ہلکے پڑ جاتے ہیں دوسروں کے سامنے. وہ کہتے ہیں یہ تو خود ہی نہیں اپنا فالو کرتے، دیکھو ذرا یہ نا وہ، یعنی آپ ایک تماشا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ کعبۃ اللہ یہی ان کا مسلمان امت کا قبلہ ہوگا. اب اگر تم بار بار کبھی کہیں پڑھو گے کبھی کہیں پڑھو گے تو ان میں تو مذاق بن جائے گا، وہ باتیں کریں گے اور ان کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا تمہارے خلاف. الا الذین ظلموا منھم، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے. یعنی ظالموں کی آپ، کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے ان کی آپ زبان نہیں بند کر سکتے، انہوں نے تو کوئی بات پکڑنی ہی پکڑنی ہے، ان کو آپ روک نہیں سکتے. آپ احتیاط کرو ان کے لیے جو انصاف والے لوگ ہیں نا، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ انصاف، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جو بھائی جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہر قوم میں ہوتے. تو ان میں بھی جو انصاف والے لوگ ہیں ان کو کوئی حجت نہ ملے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ باتیں بند ہو جائیں گی. ظالم پھر بھی باتیں کریں گے، ان کی زبانوں کو نہیں روک سکتے، ان کی پرواہ نہیں کرنی. اللہ الذین ظلموا منھم، وہ جو ظالم ہیں وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. یہاں سے بڑا ایک اہم پوائنٹ ملتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں سارے لوگ جو ہے نا کنونس ہو جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ، لیکن آپ نے صرف انصاف والے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہاں حق جو ہے وہ حق بات ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا مین آف پرنسپل ہے فلاں، یعنی اصولوں کے بندے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جو اصول ہے وہ اصول ہے. تو وہ عدل و انصاف والے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے. باقی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا، بری تو بات ہے لیکن جو کہتے ہیں نا کہ کتے تو بھونکتے ہی ہیں، تو وہ والی بات ہے کہ جو لوگ کسی قسم کی لحاظ نہیں رکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کا کام بس شر پھیلانا ہے ہمیشہ، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی بات کرنی ہی ہوتی ہے، ان کی پرواہ نہ کریں. فلا تخشوہم واخشونی، آپ نہ ڈرو ان سے بلکہ ڈرو مجھ سے. تو اپنی زندگی میں یہ بات سمجھ جائیں کہ کوئی لوگ ہوں گے جو ہمیشہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے، لیکن آپ ان کی پرواہ نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا حکم ماننے میں کون سی چیز پہلے رکاوٹ بنتی؟ لوگوں کا ڈر. اور اس کا مطلب یہ پرابلم اس زمانے میں بھی تھا کہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، جائے باتیں بنائیں گے، اب ہمیں ایسے کریں گے، پھر ہم پہ ہنسیں گے، پھر ہم پہ ٹھٹھے کریں گے، پھر ہمیں تانے دیں گے. تو وہ بھی، وہ آج بھی ہے یہی چیز، انسانوں کی سائیکی تو نہیں نا بدلتی. اس زمانے میں بھی ایسے ہی کرتے تھے لوگ، और लोगों को दीन से हटाने की कोशिश करते थे, कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते थे, डर जाते थे, उनकी प्रोपेगेंडा को सुन लेते थे और फिर उल्टा रास्ता पकड़ लेते थे। और आज भी ऐसा है, जो लोग जिनका वो वाली बात आ गई ना, कि जिनके पास हिदायत नहीं होती ना, जिनका ईमान स्ट्रांग नहीं होता, वो फिर उनकी बातों के ऊपर आ जाते हैं, वो डरते हैं फिर, यार क्या होगा, ये क्या कहेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पहले उनके मुंह देखते हैं। तो याद रखो, हमेशा कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी नहीं माना। तो क्या आप उनको खुश करने के लिए हमेशा अपने दीन को ही छोड़ते रहोगे, या कभी अल्लाह को खुश करने के लिए भी कोशिश करोगे? तो एक रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा ना, आइदर उनको खुश कर लो या अल्लाह को। अला तख्शाऊ, मैंने आपको पता है खशियत कौन सा डर होता है, जो किसी को बड़ा समझ के, किसी की अजमत की वजह से, यानी लोगों का इतना रोब हमारे दिलों में हो कि हम उनकी वजह से अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज करते। तो डरने की जरूरत नहीं, ये वो वाला खौफ नहीं जो शेर से होता है, ये वो वाला खौफ होता है कि हाय ये मेरी बातें ना करें। वलियुतिम्मा नेअमती अलैकुम, और इसलिए अल्लाह ताला ने ये किबला बदला है ताकि नेमत को तुम पे तमाम कर दे, यानी इस दीन को मुकम्मल कर दे, यानी अब ये इस दीन के अंदर यही किबला होना था। तो अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमती क्या है, इस्लाम। वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम हिदायत पा जाओ, यानी मिल्लत इब्राहिमी का जो रास्ता है वो तुम भी अपना लो, वही हिदायत का रास्ता है ना। और उनका किबला तो यही था, और वो हनीफ थे। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, जैसे कि तुम्हारी तरफ भेजा एक रसूल। जैसे कि क्या मतलब, जैसे तुम्हें हमने ये किबला दिया, इसी तरह तुम्हारे लिए रसूल भेजा। वो किबला भी क्या था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था अल्लाह का घर जमीन के ऊपर, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक यानी दावत का मरकज था। उन्हीं की दुआ थी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कि अल्लाह एक रसूल उठाना। हमने पढ़ा है ना पहले पारे के एंड में कि उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह एक रसूल उठाना इनमें। तो इसी तरह हमने रसूल भी उठाया तुम में से जो तिलावत करता है, और जो उन्होंने दुआएं मांगी थी वैसे ही है। उन्होंने भी कहा था या अल्लाह ऐसा रसूल उठाना जो तिलावत करे इन पे तेरी आया। तो अल्लाह तआला ने फरमाया जो तिलावत करता है हमारी आया तुम पे, वह युज़क्कीकुम, तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें पाक करता है। कितनी कैसी आलाइशों में वो लोग पड़े हुए थे, कैसे उनको पाक किया अल्लाह ताला ने इन आयात के जरिए रसूल भेज के। और आज भी तज़किया करना है और गंदगियों से निकलना है, अपने नफ्स को पाक करना है, तो यही कुरान ही करेगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचा हम तक। वयुअल्लिमुकुमुल किताब, और तुम्हें किताब सिखाता है, यानी कवानीन तुम्हें बताता है। वल हिक्मा, और हिकमत की बातें, यानी हदीस। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और वो तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे, वो बातें नहीं पता थी। और वाकई अगर कुरान नहीं पढ़ाओ, इंसान को हक और बातिल में पहचान नहीं हो सकती। इनको कई चीजें हैं, इंसान सोचता है ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका जवाब क्या है, ये कुरान देता है। सोचें अगर ये कुरान ना हो तो कैसे इंसान समझ पाए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ने ये जब नेमत की है ना, तो उसके बाद क्या फरमाया, कितनी बड़ी नेमत है रसूल, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना इतनी बड़ी रहमत है सब सब इंसानियत के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह की पहचान करवाई इंसानियत को, जिन्होंने हक का रास्ता बताया इंसानियत को, जिन्होंने जन्नत का रास्ता बताया, जिन्होंने जहन्नुम से बचने का रास्ता बताया। वो इतने बड़े मोहसिन है इंसानियत के, अल्लाह ताला ने ये एहसान जो इंसानियत पे किया, उसके बाद क्या डिमांड किया, फद कुरूनी, तो तुम मुझे याद करो क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाह ताला तो भूल चूक से पाक है। अल्लाह का याद रखने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला कोई भूल जाता है तो उसको याद कराना पड़ता है जब तुम याद कराओ, नहीं, बल्कि अपनी मेहरबानियां तुम पे इनायत करने के लिए तुम्हें याद रखूंगा। जैसे हम किसी को कहते ना, किसी के पास बड़ी कोई चीज हो तो हम कहते हैं, मतलब किसी ने कोई खाने की चीज बनाई है तो आप उसको कहते हैं अच्छा ये बनाया तो है, मुझे भी याद रखना, है ना। तो अल्लाह ताला जब तुम्हें याद रखता है अपनी नियमतों की बारिश करता है, और फिर ये भी हमें पता है कि जब आप अकेले में अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह भी अकेले में आपको याद करता है। जब आप मजलिस में अल्लाह को याद करते हो, तो हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला उससे बेहतर मजलिस में आपको याद करता है। तो जब हम यहाँ पे मजलिस में बैठते हैं ना, मिलके हम बैठे हुए अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो भी हमें इससे बेहतर मजलिस में, फरिश्तों के मजलिस में हमारा जिक्र हो रहा हो, हमारा नाम लिया जा रहा हो। वहां तक हम तो नहीं पहुंच सकते, हमारा नाम वहां पे गर्दिश कर रहा हो। सुभान अल्लाह, लहमा जालना मिनहु। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह को आसानी में याद रखो, वो तुम्हें मुश्किलों में याद रखेगा। यानी जब हमारे पास आसानी के दिन है ना, सेहत भी है, फरावानी भी है, सब अच्छा चल रहा है ना, तो तुम अल्लाह को याद रखो। फिर जब कोई मुसीबत आती है ना, तो अल्लाह तुम्हें याद रखेगा, अल्लाह तुम्हें उसमें से निकालेगा, अल्लाह तुम्हें भूलेगा नहीं। वैसे तो अल्लाह ताला कभी भी नहीं इंसान को भूलता, ये वाली खास याद रखना है, कभी भी नहीं इंसान को भूलता। इसलिए कि अगर वो तो इंसान को भूल जाए, तो इंसान तो चल ही नहीं सकता। ये जो हमारी सांस चल रही है, हमें खाना पीना सेहत सब मिली हुई है, ये अल्लाह ताला ने हमें याद रखा हुआ, तो फिर है ना, कि वो तो काफिर सब इंसानों को याद रखता है, मगर ये खास वाला याद रखना है कि आपकी याद आई थी, वो एक खास वाली। तो अल्लाह मुश्किलों में याद रखता है, फिर याद रखिए, आसानियों में इंसान याद करेगा तो मुश्किल में अल्लाह उसको याद रखेगा, कि उसको मुश्किल से निकालेगा। वशकुरू ली, और शुक्र अदा करो मेरा। वला तकफुरूनी, और तकफुरून नून के नीचे जो जेर है ना, तकफुरून नी करके मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप इसको रियलाइज करें कि नून के नीचे जेर का मतलब है तुम नाशुक्री वला, और ना तो तकफुरू नी, तुम नाशुक्री करो मेरी। नी का मतलब मेरी, याद ही यहाँ पे वो गिर गई, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, शुक्र अल्लाह को बंदे से मतलूब है, कि इंसान हमेशा अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन के रहे। और शुक्र गुजारी में क्या है, सबसे पहले कि इंसान हर नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करे। किसी नेमत को आप ये ना कहें मेरा कमाल है ना, हाँ मैं ऐसी हूं ना, हाँ मैंने ये किया ना, हाँ बस मेहनत मैंने बड़ी की थी इसलिए ये ऐसे मुझे नतीजा निकला। नहीं, हर नेमत को अल्लाह की तरफ, हर कामयाबी, हर सुख, हर जो आसाइश आपको मिलती है ना, अल्लाह की तरफ से ही, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने दी, ठीक है ना। आप कोई भी चीज का इंसान खुद दावा कैसे कर सकता है? अगर देखिए हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हमारी बिनाई चली जाए, लो सबको जगा रहा था, हमारी जितनी मर्जी नियतें कर लो कुछ भी नहीं हो सके। तो कोई चीज भी हमारी अपनी अपने उसमें कुव्वत से नहीं है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तो हमेशा याद रखें, पहली चीज बेस क्या है शुक्र की, हर नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करें। फिर उसके बाद जुबान से भी कहें, कुल कुल्लु मिन इंदिल्ला, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल कह दीजिए, कुल्लु मिन इंदिल्ला, सब चीज अल्लाह की तरफ से ही। फिर आजा से भी अल्लाह ताला की नेमतों को उसके लिए यूज करें। ऐसा तो नहीं है कि भाई देखें, हम मिसाल के तौर पे अब मसलन किसी ने किसी को कोई एक क्रिस्टल दिया, वो उसको कहता है मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ, बहुत शुक्र गुजार हूँ, और लेके उस क्रिस्टल को उसके सर पे मारते, ये शुक्र गुजारी है बताएं? तो अब नेमत हम अल्लाह से लें और अल्लाह के खिलाफ ही यूज करना शुरू कर दें। उससे किसी को पैसे मिले हैं, वो जाके उससे ही कोई हराम चीज खरीद के ले आए, तो ये शुक्र गुजारी है नेमत की, कि अल्लाह तूने मुझे, शुक्र है तूने मुझे पैसे दिए, तो ये शुक्र गुजारी नहीं है। शुक्र गुजारी है कि फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसको यूज भी किया जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के, हर वक्त अल्लाह हमारा दिल शुक्र से भरा रहे, क्योंकि कोई चीज भी हमारी अपनी ताकत से नहीं, वाकई नहीं है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और अल्लाह हमें जिक्र करने वाली जुबानें दे दे, क्या वह तेरा ही चर्चा करती रहे। तो उसके तो वो तो वो रब है कि पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाए और समंदर स्याही बन जाए, और उसकी बातें लिखने लगे तो उसकी बातें खत्म ना हो, तो क्या हमें उसकी बातें करनी नहीं आती? क्या हमें उसका जिक्र नहीं करना आता? या हमें समझ ही नहीं आती उसकी क्या बात करें? कैसे हो सकता है जिसकी बातें करने पे तो सारे समंदर खुश्क हो जाए, और ये इंसान को उसकी कोई बात ही ना करनी आए और उसकी याद ही ना आए। तो याद दिल में भी है, याद जुबान से भी है और याद अमल करके भी है, किसको याद रखा तो उसके हुक्मों पे चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कथीरा, ए ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो बहुत ज्यादा जिक्र करना। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वद्दाकिरीन अल्लाह कथीरन वद्दाकिराती आदल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अजरन अज़ीमा। जो जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें हैं ना, अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखी है बख्शिश और अजरे अजीम तैयार कर रखा है। तो जिक्र, अल्लाह की याद जो है वो बड़ी चीज है। अल्लाह की याद के बगैर, वो किसी शायर ने कहा ना कि जो दम गाफिल वो दम काफिर, यानी जो सांस गफलत में निकले वो दम काफिर, वो तो सांस ही काफिर है। जो सुबहान अल्लाह, बहुत प्यारी बात है, जो सांस भी जो ली अल्लाह की याद के बगैर तो वो भी क्या है। अल्लाह अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون